और इसके बाद भिक्षा शुद्धि में और कौन सी बातें हैं? तो बोले लाभा लाभ, भोजन मिले या न मिले, मानापमान, सम्मान मिले या अपमान हो, इनमें समान मनोवृत्ति, मनोवृत्ति को समान रखने वाली है। और गीत, नृत्य, वाद्योपजीवी, प्रसूतिका, मृतक, पण्यांगना, पापकर्म, दीनानाथ, दानशाला, यजन, विवाहादि, मंगल गेह, परिवर्जन परा, उस भिक्षा शुद्धि में इन घरों में जाना निषिद्ध होता है जहाँ गीत, नृत्य और वाद्य की उपजीविका करने वाले लोग रहते हैं। माने साधु गाने नाचने बजाने वालों के यहाँ पर आहार नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी वो आजीविका है, और वो आजीविका जो है वो उस दातार को दातार की श्रेणी में नहीं रहने देती। माने साधु को आहार देने योग्य नहीं रहता वो व्यक्ति अगर वो इन कार्यों से अपनी आजीविका करता हो। फिर प्रसूतिका, प्रसूतिका का अर्थ होता है जो क्या बोलते हैं उसको, मैटरनिटी होम, वहाँ पर जो नर्स काम करती है अथवा जहाँ पर बच्चों का जन्म होता है, उस स्थान पर साधु आहार नहीं ले सकते। मृतक, जिस घर में कोई मृतक अर्थात मरा हुआ शव रखा हो, वहाँ भी साधु नहीं ले सकते। फिर पण्यांगना, पण्यांगना का अर्थ होता है, पण्य का अर्थ होता है पैसे लेकर के जो स्त्री अपनी आजीविका करती है, लोगों का मनोरंजन व्यसन कराती है, वेश्या, उनके यहाँ नहीं ले सकते। फिर पाप कर्म, पाप कर्म करने वालों के यहाँ पर भी, जैसे कसाई वगैरह हैं, इनके यहाँ साधु आहार नहीं ले सकते। फिर दीनानाथ, दीन जनों के यहाँ भी साधु आहार के लिए नहीं जा सकते। अनाथ, अनाथों के यहाँ भी साधु आहार के लिए नहीं जा सकते। और दानशाला, दानशाला का मतलब जहाँ पर सबको सामान्य रूप से भोजन दान दिया जाता है, उस स्थान पर भी साधु आहार के लिए नहीं जा सकते। यजन, यजन गृह का मतलब जहाँ पर पूजन वगैरह होते हैं या फिर कोई बड़े अनुष्ठान चलते रहते हैं, वहाँ पर भी साधु आहार के लिए नहीं जा सकते। विवाह शाला में भी, जहाँ पर विवाह हो रहा हो, विवाह मंडप में भी साधु आहार नहीं ले सकते। आदि मंगल गेह, आदि और भी ऐसे मंगल स्थान होते हैं जहाँ पर कई ऐसे लौकिक मंगल कार्य हो, संपन्न हो रहे हों, वहाँ भी परिवर्जन परा साधु उसको छोड़ देते हैं। भिक्षा शुद्धि में इन का स्थानों का भी निषेध होता है। और चंद्र गतिरिव हीनाधिक गृह, जैसे चंद्रमा की गति होती है तो वो किसी को छोड़ता नहीं, चंद्रमा कुटियों को भी प्रकाशित करता है, फिर महलों को भी प्रकाशित करता है, हर जगह उसका प्रकाश फैलता है। इसी प्रकार साधु जब गमन करते हैं आहारचर्या के लिए, तो वो सब घरों के आगे से निकल जाते हैं। विशिष्ट उपस्थाना, और विशिष्ट उसका उपस्थान होता है। उपस्थान का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट उपस्थान, हीनाधिक गृह, छोटे बड़े सबके घरों पे जाने की उसमें प्रवृत्ति होती है आहार दान के लिए। जब कोई खड़ा है तो फिर छोटा घर हो या बड़ा घर हो, वहाँ पर साधु आहार ले सकते हैं। विशिष्ट उपस्थान, विशेष, विशिष्ट जिसमें उपस्थान है, उपस्थान ठीक है। लोक गर्हित कुल परिवर्जन उपलक्षित, लोक में जो निंदित कुल है माने परिवार है, उसके परिवर्जन से उपलक्षित रहती है भिक्षा शुद्धि। यानी लोक निंदा जिनको प्राप्त हुई है उनके घर में साधु आहार नहीं ले सकते। दीन वृत्ति विगम, और दीन वृत्ति का जिस भिक्षाचर्या में विगम अर्थात अभाव है, दीनता वहाँ भिक्षा वृत्ति में नहीं हो सकती। प्रासुक आहार गवेश सावधान, प्रासुक आहार की गवेषणा में यानी निर्दोष आहार की खोज में जो भिक्षा शुद्धि सावधान है और आगम विहित निरवध्यासन परिप्राप्त प्राण यात्रा फला, आगम में बताए गए निर्वध्य यानी निर्दोष अशन यानी भोजन उससे परिप्राप्त की है प्राण यात्रा रूप परिणति जिसने, अर्थात शास्त्रोक्त निर्दोष आहार से प्राप्त होने वाली शरीर की शक्ति जिसमें होती है, ऐसी भिक्षा शुद्धि होती है। और उसका परिणाम क्या है? बोले तत्प्रतिबद्ध ही चरण संपद, उस भिक्षा शुद्धि के होने पर ही चरण संपत्ति यानी चारित्र रूपी संपत्ति हो सकती है। गुण संपद व साधुजन सेवा निबंधना, जैसे गुणों की संपदा साधुजनों की सेवा के कारण ही प्रकट होती है, उसी प्रकार भिक्षा शुद्धि से चारित्र की संपदा साधु को प्राप्त होती है। सा भिक्षा वह भिक्षा लाभा लाभयो हो, लाभ और अलाभ दोनों में, सरस विरसयोश्च सरस और नीरस दोनों प्रकार के भोजन में सम संतोष विद्भिः भिक्षेति भाष्यते। समता और संतोष धारण करने वालों के द्वारा भिक्षा ऐसी कही जाती है, भिक्षा शुद्धि है। भिक्षा शुद्धि परस्य मुने रशनम पंचविधम भवति, भिक्षा शुद्धि से युक्त जो मुनि होते हैं उनका भोजन पांच प्रकार का है, गोचराक्ष रक्षण उदराग्नि प्रशमन भ्रमराहार श्वभ्रपूरण नाम भेदेन यथा। अब ये पांच प्रकार की वृत्तियों की चर्चा रायण सार ग्रंथ में निकल चुकी थी, फिर भी यहाँ पर साक्षात टीका में अपन देख लें, यथा जैसे सलील सालंकार वर्यवति भेद रूपनीय माने घासे गौर न तदंगत गत तदंग तत्सौंदर्य निरीक्षण परस तृणमेवाति। जैसे कोई कन्या अपने यहाँ पाले हुए बैल को घास खिला रही हो तो घास खिलाते समय वो सलील लीला सहित हो यानी उसकी चाल में कुछ अलग प्रकार की लीला हो, सालंकार अलंकार धारण किए हुए हो और वर युवती यानी श्रेष्ठ युवती हो, लेकिन उन युवती या युवतियों के द्वारा भी लाए गए घास पर गौ माने बैल न तद अंग तत् सौंदर्य न उसके शरीर को न उसकी सुंदरता को निरीक्षण पर देखता है, तृणमेवाति बस सिर्फ घास खा लेता है। यथावा अथवा जिस प्रकार तृणलवम नाना देशस्थम यथा लाभम अव्यवहरति, बैल को अगर खुला छोड़ दो तो जहाँ भी घास फूस मिल जाए तो अनेक स्थानों पर स्थित तृणलवम थोड़े थोड़े घास के तृणों को खा खा करके यथा लाभम जितना मिल जाता है उतना खा लेता है, न योजना संपदम अपेक्षते, वो ये नहीं देखता कि भाई ये घास कहाँ से मैं इकट्ठा करूँ और फिर कहाँ से उसकी योजना बने, बल्कि जहाँ मिल जाता वहीं ग्रहण करके आगे बढ़ जाता है। तथा भिक्षुरपि, उसी प्रकार भिक्षु भी साधु भी भिक्षा परिवेशक जन मृदु ललित तन रूप वेशाभिलाष विलोकन निरुत्सुक है, वैसे साधु भी भिक्षा परिवेशक यानी भिक्षा देने के लिए उत्कंठित जो जन होते हैं लोग उनके मृदु ललित तनु रूप, उनका मृदु यानी कोमल, ललित यानी नवीन, तनु यानी शरीर का रूप, उनकी वेश और अभिलाषा पूर्वक उनका विलोकन, अभिलाषा पूर्वक इनका विलोकन का अर्थ होता है कि कुछ अलग प्रकार की भावना से कुछ उनकी शारीरिक सुंदरता के प्रति दृष्टि रख करके देखने के प्रति वो साधु निरुत्सुक रहते हैं, यानी सुंदरता को देखने के लिए वो श्रावकों की तरफ नज़र नहीं डालते बल्कि सिर्फ अपने आहार विधि के हिसाब से वो देख लेते हैं कि ये यहाँ योग्य है कि नहीं। शुष्क द्रवाहार योजना विशेषम व अनवेक्षमाण, सूखे या गीले आहार की योजना विशेष के प्रति जो अनवेक्षमाण परवाह नहीं कर रहे हैं, माने जैसा मिल रहा है सूखा मिल रहा है तो सूखा सही, गीला मिल रहा है तो गीला सही। यथागतम अश्नाती, जैसा हाथ में आ जाए वैसा ही ग्रहण कर लेते हैं, भोजन ले लेते हैं। गौरव चारों, जैसे गाय घास चरती है उसी के समान गोचार इति कथ्यते, वो गोचार वृत्ति कही जाती है, स्त्रीलिंग में गोचरी वृत्ति कहते हैं। तथा गवेषणी इति च, उसी का नाम गवेषणा भी कहते हैं। गवेषणा शब्द जैन संस्कृति का है, बाकी चला है पूरे हिंदी भाषा में। यथा, अब दूसरी वृत्ति कौन सी है, तो गोचरी वृत्ति हो गई एक। फिर अक्षम रक्षण वृत्ति है, अक्षम रक्षण में क्या कहते हैं, यथा शक्टीन, जैसे कोई गाड़ी है रत्न भार पूर्ण, रत्नों के भार से पूरित है। येन केन चित स्नेहेन, जिस किसी स्नेह माने चिकने पदार्थ द्वारा अक्षलेपम कृत्वा, उंगन लगाकर, मैंने उसके चक्के चिंग चैने करे इसलिए वहाँ पर कुछ ऑयल ग्रीस डाल डाल करके, अभिलषित देशांतरम वणिग्नयति, व्यापारी उसको अपने इष्ट स्थान पर पहुँचा देता है। अब आजकल तो वो वैसी गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन अभी दूसरे ट्रक वगैरह हैं, साधन तो आज भी है ना, गाड़ियाँ तो चलती है, बाय रोड तो ट्रांसपोर्टेशन होता ही है, तो उसमें भी बीच में ग्रीस वगैरह सब बराबर डालना पड़ता है। तथा उसी प्रकार मुनिरपि, मुनि भी गुणरत्न भरिताम तनुशक्ति, गुण रूपी रत्नों से भरी हुई शरीर रूपी गाड़ी को अनवद्य भिक्षा योग रक्षम रक्षणेन, निर्दोष भिक्षा रूपी अक्षम रक्षण के द्वारा माने ओंघन ग्रीज के द्वारा अभिप्रेत समाधि पत्तनम प्राप्यति, अपने इष्ट समाधि रूपी बंदरगाह तक उस शरीर रूपी गाड़ी को मुनि महाराज पहुंचा देते हैं। अक्षम रक्षणमिति च नाम प्रसिद्धम, उसका नाम अक्षम रक्षण भी प्रसिद्ध है। फिर तीसरी कौन सी वृत्ति है, अग्नि प्रशमन, उदराग्नि प्रशमन। यथा भांडागारे समुत्थितम वैश्वानर, जिस प्रकार भांडागार यानी खजाने में उत्पन्न हुई वैश्वानर यानी अग्नि को अशुचिना शुचिना व पानी ने मैले या सुथरे साफ पानी द्वारा गृही प्रशमयति, गृहस्थ बुझा देता है। तथा उसी प्रकार यथा लब्धेन यतिरपि, यथा लब्ध माने जैसा भोजन मिल रहा है उसके द्वारा साधु भी उदराग्नि पेट की अग्नि को जठराग्नि को सरसेन विरसेन व आहारेण स्वादिष्ट अथवा अस्वादिष्ट आहार द्वारा प्रशमयति, बुझा देते हैं। इति उदराग्नि प्रशमन इति च निरुच्यते, उसका नाम उदराग्नि प्रशमन वृत्ति है। दात्रीजन बाधया विना, अब चौथी कौन सी है, भ्रामरी, नहीं श्वभ्रपूरण, नहीं भ्रामरी है, ठीक है श्वभ्रपूरण उसके आगे। तो दाता जनों को बाधा दिए बिना कुशलो मुनि, जो कुशल साधु होते हैं वो भ्रमद्वद आहरतीति, भ्रमर आहार इत्यपि परिभाष्यति, भ्रमर के समान जैसे भ्रमर फूलों का रस लेता है लेकिन फूलों को बाधा नहीं पहुँचाता, उसी प्रकार साधु भी दाताओं को बाधा पहुंचाए बिना आहार ग्रहण करके चले आते हैं, उसका नाम भ्रमराहार है। फिर पांचवी जो है, येन केनचित कृताचारेण, कृतचारेण, जिस किसी कृतचार माने प्रवृत्ति के द्वारा शब्र पूर्णवत, जैसे घर में कोई गड्ढा हो जाए बीच में कहीं, कुछ उखड़ जाए थोड़ा सा हिस्सा जमीन का, तो फिर गृहस्थ लोग उसमें रेत मिट्टी या सीमेंट वगैरह भर करके उसके लिए अलग से बहुत सारे मिस्त्रियों को नहीं बुलाते, छोटा सा गड्ढा हो गया तो फिर उसमें कुछ डाल करके उसको पैक कर देते फटाफट। बस इसी प्रकार साधु भी आहार को अपने यहाँ पर कमरे में नहीं बुलवाते, वो खुद जा करके वहाँ पर श्रावक के घर अपने पेट रूपी गड्ढे को पूरे यदि पूर देते, भर देते। अनगार पूरे यदि स्वादुना निस्वादुना, स्वादिष्ट अथवा अस्वादिष्ट कैसा भी वाहारेण आहार द्वारा उदर गर्त पूर्णम इति श्वभ्र पूर्णम च निगद्य, पेट रूपी गड्ढे को भर देते हैं, ये श्वभ्र पूर्ण वृत्ति कहलाती है। प्रतिष्ठापन शुद्धि पर, अब इसके बाद छठी शुद्धि कौन सी है, प्रतिष्ठापना शुद्धि। प्रतिष्ठापन शुद्धि पर संयत हो, प्रतिष्ठापना शुद्धि में तत्पर जो संयत है वो नख रोम सिंघाणक श्लेष्म निष्ठीवन शुक्र मलमूत्र त्यजने देह परित्यागे च ज्ञात प्रदेश कालो जंतु पीड़ाम बाधाम विना प्रयतते, ये इतनी सारी जो शरीर संबंधी अशुद्धियां हैं इनको कहीं डालना हो धरती पर तो फिर उस समय ज्ञात प्रदेश कालो, क्षेत्र और काल को जानने वाले वे साधु जंतु पीड़ाम बाधाम विना, प्राणियों को पीड़ा न हो बाधा न हो इस तरीके से प्रयत्न करते हैं तो प्रतिष्ठापना शुद्धि होगी। देह परित्यागे च, शरीर भी छोड़ना हो तो फिर ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां धन्य कुमार मुनि गए थे ना आखिरी में, जब 9 महीने उनकी आयु रह गई थी तब वो ऐसे स्थान पर चले गए थे। संयतेन शयनासन शुद्धि परेण, जो शयन और आसन शुद्धि में तत्पर संयत है वे स्त्री, दुष्ट जीव, नपुंसक, चोर, मद्यपायिक, कल्पपाल, द्यूतकार, पक्षी वधक, नीच लोकादि पापजन पापजन आवासा वर्जा, उस संयत को भी सोते समय और आसन लगाते समय ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए जहाँ स्त्रियों का आगमन हो, दुष्ट जीवों का आगमन हो, नपुंसकों का संचार हो, चोर हो, शराबी लोग हो, कल्पपाल। कल्पपाल का अर्थ क्या है? छोड़ दिया पंडित जी ने, बहुत सारी चीजें छोड़ी है। शराबी के बाद सीधा जुआरी ले लिया, क्योंकि शराबी और जुआरी के बीच में कल्पपाल शब्द आया है, अब कल्पपाल भी कोई होते हुए। फिर पक्षी वधक, पक्षियों को मारने वाले। फिर नीच लोक, आदिक जो पापी जन है उनके आवास साधु को छोड़ देने चाहिए। शयन आसन शुद्धि में तत्पर रहने वाले साधु को इनके आवास छोड़ देने चाहिए, ऐसे आवासों पर नहीं जाना चाहिए सोने के लिए या फिर आसन लगाने के लिए। श्रृंगार विकार भूषणोज्ज्वल वेश, वेश्या क्रीड़ा भी राम, वेश्या क्रीड़ा भी राम, गीत नृत्य वादित्राकुल प्रदेश, ये स्थान भी छोड़ देने चाहिए जहाँ पर श्रृंगार और विकार वाले जो भूषण और उज्ज्वल वेश वाली वेश्याओं की क्रीड़ा से सुंदर और गीत नृत्य और वादित्र से व्याप्त स्थान है। अब वो तो एक अपवाद कथा है कि वो एक मुनि चले गए थे वहाँ पर, उन्होंने चौमासा कर लिया था स्थूलीभद्र जी ने, लेकिन फिर दूसरे मुनि गए अगले साल तो फिर उनका सब कबाड़ा हो गया, पूरा नष्ट हो गया, तो इसलिए ऐसे स्थानों का निषेध किया है। फिर विकृतांग गुह्य दर्शन काष्ठ मयालेख्य हास्योपभोग महोत्सव वाहन दमनायुध व्यायाम भूमयश्च, फिर ऐसे स्थान भी छोड़ देने चाहिए जहाँ पर विकृत अंग यानी शरीर वाले लोग हैं और गुह्य दर्शन माने अपने शरीर के गुप्त स्थानों को दिखलाने वाले, काष्ठ में लकड़ी की बनी हुई इस प्रकार की प्रतिमाएं अधिक हों या आकृतियाँ हों, लेख्य माने लिख करके बनाए हुए जो चित्र वगैरह हों, और हास्योपभोग मतलब इस प्रकार के जितने भी राग उत्पन्न करने वाले जो स्थान हैं, व्यायाम भूमि आदि भी छोड़ देना चाहिए साधुओं को। अगर सोने जाना है तो फिर किसी व्यायामशाला में जहाँ पहलवान लोग ऐसे ऐसे वो डंबल्स वो कर रहे हैं वहाँ जाकर के सोना नहीं चाहिए, वो स्थान छोड़ देना चाहिए। और राग कारणानि इंद्रिय, राग कारणान इंद्रिय गोचर विषया, राग में कारणभूत जो अनिंद्रिय, राग कारणानींद्रिय गोचर विषय, और राग में कारणभूत जो इंद्रिय के गोचर विषय हैं, मद मान शोक कोप संक्लेश स्थानादयश्च, और मद उत्पन्न करने वाले, मान उत्पन्न करने वाले, शोक उत्पन्न करने वाले, कोप उत्पन्न करने वाले और संक्लेश उत्पन्न करने वाले स्थानादिक भी परिहर्तव्य हो, साधुओं को छोड़ देना चाहिए। शयन आसन के लिए ये चीजें वर्जित हैं। अकृत्रिमा गिरिगुहा तरुकोटरादय, कृत्रिमाश्च शून्यागारादयो मुक्त मोचित वासा आवासा अनात्मोद्देश्य निष्पन्ना निरारंभा सेव्या। फिर कैसे स्थानों का सेवन करना चाहिए साधुओं को? अकृत्रिमा, जो किसी के द्वारा बनाए गए नहीं हैं, ऐसे गिरिगुहा पहाड़ों की गुफाएं हैं, तरुकोटर यानी पेड़ की खोल वगैरह हैं। कृत्रिमाश्च, और फिर कुछ बनाई हुई स्थान भी साधु सेवन कर सकते हैं, वहाँ भी रुक सकते हैं। शून्यागार आ गए, शून्यागार माने जहाँ पर कोई रहता नहीं है, ऐसे आवास। फिर मुक्तमोचित आवास, मुक्तमोचित का मतलब होता है छोड़े हुए या खाली कराए हुए जो आवास है, वहाँ भी साधु रह सकते हैं। अनात्मोद्देश्य निष्पन्ना, लेकिन अपने उद्देश्य से निष्पन्न नहीं होने चाहिए, अपने लिए बनाए हुए नहीं होने चाहिए। निरारंभा, आरंभ रहित होने चाहिए, वहाँ ये सब घर संबंधी आरंभ न होते हो उस स्थान पर साधु ठहर सकते हैं। नहीं तो सिगड़ी जल रही है और उस पर फिर कुछ बघार वघार हो रहा है और वहाँ पर साधु को रात में रुकवा दो, तो ऐसे स्थानों पर नहीं रुक सकते जहाँ आरंभ होते हैं। तत्र संयतस्य त्रिविधो निवास स्थानम आसनम शयनु चेति, वहाँ संयत तीन प्रकार से निवास कर सकते हैं, स्थान यानी ठहर सकते हैं, आसन यानी आसन लगा सकते हैं, शयन यानी सो भी सकते हैं। पादौ चतुरंगुलांतरे प्रस्थाप्य, पैरों को चार अंगुल के फासले पर स्थापित करके, अधस्तिर्य ऊर्ध्वान्यतम मुखो, नीचे तिरछे ऊपर, इनमें से किसी एक स्थान पर मुख करते हुए भूत्वा, यत्रात्म भावो यथावत स्वभाव, जहाँ अपना भाव यथावत स्वभाव वाला, यथात्म बल वीर्य सदृश, अपने आत्म बल और अपने आत्मशक्ति के समान कर्मक्षय प्रयोजन है, कर्मक्षय जिसका प्रयोजन है, ऐसे होकर असंश्लिष्ट मतिस्तिष्ठेत, राग रहित मति को धारण करके अगर ठहर जाते हैं, अथ न शक्नुयात, अगर वैसे समर्थ न हो तो निष्प्रतिज्ञात, फिर प्रतिज्ञा रहित होते हुए पर्यंकादिविर आसन ही रासीत, पर्यंकासन आदि के द्वारा स्थित हो जाना चाहिए। पर्यंकासन अपेक्षाकृत सरल है, बाकी आसन जो है ना वो कठिन होते हैं। यद्य परिमित काल योग, अगर असीमित काल योग करना हो, खिन्न हो, अगर खिन्न हो अर्थात थके हुए हो, तो एक पार्श्व बाहु प्रलंबन संवृतांगादि भी अल्पकालम श्रम परिहारम शयित, तो फिर एक पार्श्व यानी बाजू से एक पार्श्व बाहु प्रलंबन संवृतांगादि, प्रलंबन संवृतांग एक तरफ अपने भुजा को रखकर प्रलंबन संवृतांग, प्रलंबन यानी लंबे शरीर करके सीधा, और संवृतांग यानी ऐसे सिकुड़ करके, आदि भी, आदि माने और भी ऐसी कोई मुद्रा हो सकती है सोने के लिए, अल्पकालम थोड़े काल के लिए, श्रम परिहार्थम जो परिश्रम है उसको दूर करने के लिए शयित सो लेना चाहिए, ये शयनासन शुद्धि होगी। बहुत लंबी थी शयनासन शुद्धि, मैंने निषेध किया ना कई स्थानों पर संयत को, शयन आसन वगैरह नहीं करना चाहिए। फिर वाक्य शुद्धि आखिरी है, पृथ्वी कायाद कायिकाद्यारंभ प्रेरणा रहिता, पृथ्वी काय आदि संबंधी आरंभ की प्रेरणा से रहित होती है वाक्य शुद्धि। युद्ध, काम, कर्कश, संभिन्नालाप, पैशन्य, पैशन्य उन्होंने बड़ी ऊँची मात्रा कर दी है, वो हाथ से की हुई दिख रही है अलग से, वैसे छोटी होनी चाहिए थी मात्रा, पैशन्य ऊँची मात्रा जो है दीर्घ गलत छप गई है, रस होनी चाहिए पैशन्य। परुष, निष्ठुर आदि पर पीड़ा कर प्रयोग निरुत्सुका, वाक्य शुद्धि कैसी होती है कि युद्ध की चर्चा, काम की चर्चा, कर्कश वचन, संभिन्नालाप, संभिन्नालाप यानी संभिन्न भेदभाव पैदा करने वाले आलाप, फिर पैशन यानी चुगलखोरी, परुष का अर्थ भी कठोर होता है, निष्ठुर का अर्थ भी कठोर होता है, कर्कश होता है, आदि दूसरों को पीड़ा करने वाले जो प्रयोग होते हैं वाणी के, उसके प्रति ये वाक्य शुद्धि निरुत्सुक बना देती है, माने कभी साधु को ऐसा उत्साह ही नहीं होता कि इस प्रकार के वचन बोले। बोलने की क्षमता है, वाक्य सब जानते हैं, ज्ञान में सारी बातें हैं कि अब भी एक वाक्य बोलूं तो फिर ये छः दिन तक के इसको भोजन नहीं रुचेगा, इतने बोलने की ताकत है, लेकिन उसके प्रति उनका उत्साह नहीं होता। स्त्री भक्त राष्ट्रावनिपाल आश्रित कथा विमुखा, स्त्री के आश्रित कोई कथा हो, भक्त यानी भोजन से संबंधित कथा हो, राष्ट्र से संबंधित कथा हो, और अवनिपाल यानी राजा से संबंधित कोई कथा है, तो उसके प्रति विमुख रहती है वचन शुद्धि। व्रतशील देशना दि प्रदान पला, व्रत और शील की देशना आदि को प्रदान करना ही इस वाक्य शुद्धि का फल है। यानी ऐसे वचन हो जाए कि जिसमें ये सब फालतू बातें ना हो, तो फिर क्या निकलेगी बात उन वाणी से, उस वाणी से व्रतों की देशना मिलेगी या फिर शील आदि की देशना प्राप्त होगी, यही उसका फल है। फिर स्वपर हित मित मधुर मनोहरा, अपने लिए हितकारी, दूसरों के लिए हितकारी, अपने सीमित भाषा हो, मधुर हो, मनोहर हो। परम वैराग्य हेतुभूता, परम वैराग्य में कारणभूत हो, ऐसी वो वाक्य शुद्धि होती है। फिर परिहृत परात्म निंदा प्रशंसा, और जिस वाक्य शुद्धि में दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा इनका परिहार किया जाता है, इनका त्याग किया जाता है। संयतस्य योग्या, ऐसी भाषा संयत को बोलने योग्य होती है। तदष्ठित तदधिष्ठानः सर्व संपदा, और उसके आधार पर सब संपत्तियां प्राप्त होती हैं। संयम भेदा साक्षात मोक्ष प्राप्ति कारणानि, संयम के जो भेद हैं, पांच भेद होते हैं, वो साक्षात मोक्ष प्राप्ति में कारण होते हैं। सामायिकन छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात चारित्रम इति, पांच नाम हो गए। तथा च और पंच महाव्रत धारण, पंच समिति परिपालन, पंचविंशति कषाय निग्रह, माया मिथ्या निदान, दंड त्रय त्याग, पंचेंद्रिय जय संयम, इतनी सारी बातें आ गई संयम में। इंद्रिय मतलब मन वचन का है कि प्रवृत्तियों का त्याग और इंद्रियों पर विजय, ये संयम है। असुहादो वेणी वित्ती सुहे पवित्ती ये जान चारित्तम वद समिति गुत्ति जुत्तम व्यवहारणयादु जिन भणियम। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि व्यवहार ने से चारित्र किसको कहते हैं, अशुभ का त्याग करके शुभ में प्रवृत्ति होना, व्रत समिति और गुप्ति से युक्त वो चारित्र होता है। पांच व्रत, पांच समिति और तीन गुप्ति, यानी 13 भेद हो गए व्यवहार चारित्र के। एतेषां विस्तार व्याख्या, इनकी विस्तृत व्याख्या गुम्मट सार, भगवत्याराधना, चारित्र सार, आचार सार आदि ग्रंथेषु ज्ञातव्या, इन ग्रंथों में जान लेना चाहिए चारित्र की विस्तृत व्याख्या। अथ तपोधर्म माचष्टे, अब तपोधर्म का कथन करते हैं। इह परलोय सुहाणम निरवेखो जो करे दि समभावो, विविहम काय किलेसम तव धम्मो निम्मलो तस्स। जो इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी सुखों के प्रति निरपेक्ष होकर समभाव समता भाव धारण करते हुए विविहम काय किलेसम करे दि, अनेक प्रकार के काय क्लेश करते हैं, तस् निम्मलो तव धम्मो, उनके पास निर्मल तप धर्म अर्थात उत्तम तप धर्म होता है। ठीक है, अभी यहां पर संक्षिप्त है, आगे उसका विस्तार हो सकता है। तप का जो विस्तार है 12 प्रकार के भेद है तप के, यहाँ तो एकदम संक्षिप्त है। जो चयदि मिठ भोज्यम वयरणम राय दोष संजनयम वसदि ममत हेदुम चाय गुणो सुहवे तस्। वह त्याग धर्म उन मुनि के पास होता है जो मिठ भोज्यम चयदि, मिष्ट भोजन का त्याग करते हैं, और राय दोष संजयनयम उवेरणम चयदि, राग दोष के जो संजनक उपकरण है, उत्पन्न करने वाले उपकरण है राग द्वेष, उनका त्याग कर देते हैं। और ममत्त हिदम वसतिम चयदि, ममता में कारणभूत किसी वसतिका को भी छोड़ देते हैं कि ये हमारा अच्छा कमरा है, ये हमारा अच्छा कमरा है, ऐसी जो भावना आ जाती है तो उस कमरे को ही छोड़ दो, हटाओ, झंझट खत्म। तो ऐसे मुनि के त्याग नाम का धर्म होता है। तस्य मुनि ही जगत प्रसिद्ध त्याग गुण दानाख्य गुण त्याग धर्मो वा भवेत स्यात्। वो दान नाम का जो गुण है, त्याग धर्म जो है, वो उन मुनि के पास होता। कस्य, कौन से मुनि के पास? तो यह मुनि त्यजति परति, जो मुनि जो होते हैं त्याग करते हैं। तत्किम, किसका? मृष्ट भोज्यम, मिष्ट का अर्थ यहां पर मृष्ट निकाला है, ठीक है। मृष्ट का देखिए अर्थ क्या किया, रसादिकम वृष्य रसम कामजनकम, जो बहुत रसीला भोजन है, वृष्य रस यानी देर से पचने वाला है, काम उत्पन्न करने वाला है। कंदर्पोत्पादकम सरस आहार, कंदर्प यानी काम की बाधा को उत्पन्न करने वाला जो सरस स्वादिष्ट आहार है, तो उसको त्यजति, त्यागते हैं। तथा उसी तरह रागद्वेष जनकम उपकरणं त्यजति, रागद्वेष जनक जो उपकरण है उसको त्याग देते हैं। रागद्वेषोत्पादकम परिग्रहं त्यजति, आचार्य जी ने एक बार कहा था कि शास्त्रों के ऊपर कभी ऐसे रंग बिरंगे कवर नहीं चढ़ाना चाहिए, बहुत सारे डिज़ाइन वाले और फिर अच्छे फोटोग्राफ्स हो जिसमें नेताओं के, ऐसे फूड कवर नहीं चढ़ाना चाहिए। एक बार क्या था, किसी ने, उस जमाने में इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री थी, फिर उसके बाद की बात है, किसी ने ऐसे कवर चढ़ाया अखबार का, तो उसमें फोटो, आचार्य ने बोला कि ऐसे नहीं चढ़ाए, इससे रागद्वेष उत्पन्न होता। तो ऐसे उपकरण का त्याग करते हैं। और रागद्वेष उत्पादन परिग्रहं त्यजति, ऐसे परिग्रह का त्याग कर देते हैं जो राग और द्वेष उत्पन्न करने वाले हैं। यत, जो रागद्वेष उत्पादक क्षेत्र, भूमि, प्रदेश, वसतिका, दि धन धान्य द्विपद चतुष्पद आदिकम त्यजति, ये सारी चीज़ें भी छोड़ देते हैं, जमीन है, भूमि है, प्रदेश है, वसतिका है आदि, और धन धान्य है, द्विपद चतुष्पद, द्विपद यानी दो पैरों वाले नौकर चौकर चाकर उदन, चतुष्पद यानी जानवर आदि हैं, उनको भी छोड़ देते हैं। चारित्र सारे, चारित्र सार में उपदित त्याग पुरुष हितो, ये त्याग जो होता है इसके बारे में चारित्र सार ग्रंथ में लिखा है कि ये परिग्रह का त्याग आत्मा के लिए हितकारी है। यह तो क्योंकि यत परिग्रहात अपेत है, जितने परिग्रह से वो दूर हुआ है, ततः संयत होती, तो उससे वो संयत हो गया, मैंने अब कभी उसको असंयम का दोष नहीं लगने वाला, ततोस्य खेतो व्यपगतो भवति, और उससे संबंध रखने वाला जो खेद है वो भी दूर हो गया, परिग्रह छोड़ दिया तो अब कोई तकलीफ नहीं होगी। साधु जिस वस्तिका में ठहरे हैं, वहाँ से अगर कोई घड़ी चुरा करके ले जाए या कोई चीज़ उठा करके ले जाए, तो चूंकि साधु का वो परिग्रह नहीं है तो फिर उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जिसका होगा वो रोएगा कि अरे ये क्या महाराज जी आपके यहाँ पर रखा था, महाराज जी ने बोला कि इसीलिए तो हम कहते थे कि हमारे यहाँ ये सब मत रखो, प्रपंच हटाओ। तो उससे खेद भी दूर हो जाता है। फिर परिग्रह परित्याग परलोक परम सुख कारण बनते, इस लोक और परलोक संबंधी परम सुख का कारण परिग्रह का त्याग बनता है। निर्वध्य मन प्राणिधानम, और मन का जो प्राणिधान यानी ध्यान जो होता है वो निर्वध्य निर्दोष हो जाता है। और पुण्य विधानम निधानम भवति, और मन जो होता है वो पुण्य का भंडार बन जाता है, इतना पवित्र हो जाता है परिग्रह के बिना। परिग्रह बलवती स्वदोष प्रसव योनि, परिग्रह जो होता है वो अपने में दोषों को उत्पन्न करने के लिए बहुत बलवान उत्पत्ति स्थान बनता है। यानी किसी के अंदर दोष नहीं है और उसके पास परिग्रह आ जाए तो फिर दोष उत्पन्न फटाफट हो जाएंगे उसके अंदर। परिग्रह संग्रह ही वो दुख भयादिकम जनयति इति, परिग्रहों का संग्रह ही दुख और भय आदि को उत्पन्न कर देता है। राग द्वेष जनकम उपकरणम, राग और द्वेष को उत्पन्न करने वाले जो उपकरण है, मनोज्ञ रागकारी कनक रजत आदि निष्पादित, सोने चांदी आदि से बने हुए कमंडलू पट्टसूत्र जड़ित पिच्छिका, अथवा उसी प्रकार के सोने चांदी के चेन से अगर पिच्छिका को जड़ित कर दो, फिर पुस्तक भी अगर वैसे ही बने हो बहुत कीमती उन चीज़ों से, जप मालिका जप करने की जो मालिका है, माला, वो भी अगर ऐसे बहुत महंगे महंगे वस्तुओं से बनी हो तो उससे राग उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी वस्तुओं को नहीं रखना जो राग उत्पादक हो। और चक्कल पीठादिकम, चक्कल पीठादिकम का मतलब जैसे जिसके ऊपर चौकी वगैरह, चक्कल यानी चौकी, पीठादिकम मतलब ये आसन वगैरह हैं जिस पर बैठने का स्थान है अपने, तो ये भी ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए साधु को कि जिससे राग उत्पन्न हो जाए। तो इसको त्यजति, साधु छोड़ देते हैं। मुनिवासम उपाश्रय स्थान, मुनियों का जो आवास है, उपाश्रय स्थान है, वो ममत्व कारण मोहोत्पादनम त्यजति। अगर ममत्व का कारण बन जाता हो या मोह को उत्पादक उत्पादन करने वाला हो तो त्यजति, साधु छोड़ देते हैं। तथा तत्वार्थ सूत्र है, उसी प्रकार तत्वार्थ सूत्र में संयमी नाम योग्यम ज्ञान संयम शौचोपकरणादि दानम त्याग उच्यते। संयमी के योग्य, संयमियों के योग्य ज्ञान संयम और शौच संबंधी उपकरण आदि का प्रदान करना त्याग कहा जाता है। गुरु महाराज ज्ञान देते हैं, संयम का उपकरण यानी पीछे का भी देते हैं, शौचोपकरण यानी कमंडलों आदि भी प्रदान करते हैं, तो वो त्याग कहलाता है। आकिंचन्य धर्म, त्याग का अर्थ यहाँ पर दान लेना है। रस परित्याग वगैरह तो तप में आएगा, यहाँ पर त्याग धर्म में क्या आना है, जो साधु दे सकते हैं ऐसी वस्तुएं आएंगी। साधु दूसरों को क्या क्या दे सकते हैं और फिर कौन सी चीज़ें साधु के लिए बाधक है, उनका भी त्याग कर देना, त्याग धर्म हो जाएगा। आकिंचन्य धर्म वितनोति, आकिंचन्य धर्म को विस्तृत कर रहे हैं। तिविहीन जो विभज्यदि चेयण मियरं च सव्वहा संगम लोय व्यवहार विरदु निगंथत्तम हवेतस। आकिंचन्य का अर्थ निष्परिग्रहपना है, निर्ग्रंथता है। तो निर्ग्रंथता उन मुनि के पास होती उत्तम आकिंचन्य धर्म, जो तिबिहेण तीन प्रकार से चेतन और अचेतन परिग्रह का सर्वथा त्याग कर देते हैं। मैंने कृत करित कारित अनुमोदना से भी वो छोड़ देते हैं। किसी ने बताया कि अब मैं 18,000 कमाता हूँ एक महीने में, अरे वाह बहुत अच्छा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो, बिल्कुल वो कमाया ना कमाया उससे कोई मतलब, उसमें अनुमोदना भी नहीं करेंगे किसी प्रकार से। लोय व्यवहार विवधुम, लोक व्यवहार से भी विरत रहते हैं, माने लौकिक व्यवहार में भी वो साधु नहीं लगते, उनका आकिंचन्य धर्म होता है। तस्य मुने निर्ग्रंथत्व परिग्रह राहित्यम आकिंचन्य नाम, आकिंचन्यम नाम धर्म भवेत। उन मुनि के पास निर्ग्रंथता परिग्रह रहितता अथवा आकिंचन्य नाम का धर्म होता है। तस्य कस्य, वो कौन से मुनि, यो मुनि जो मुनि विवर्जयति त्यजति छोड़ देते हैं, कम किसको, संगम परिग्रह, परिग्रह को छोड़ते हैं। कैसे परिग्रह को, चेतनम, चेतन परिग्रह कौन सा, शिष्य छात्र आर्यिका क्षुल्लिका पुत्र कलत्र मित्र स्वजन बांधवादि लक्षण, ये सब सचेतन परिग्रह हो गए, इनको छोड़ देते हैं। सचेतन त्यजति इतरच्छ, और क्या दूसरा, अचेतन, अचेतनम क्षेत्र वास्तु धन सुवर्ण रत्न रूप्य ताम्र वस्त्र भाजन शय्या सनादिकम, ये शय्या शन लिख गया ना, शय्या सन, क्योंकि अशन करोगे तो भोजन हो जाएगा, तो भोजन भी रख सकते हैं। क्या बात है कि इन किसी, इन ऐसी किसी वस्तु का वो संग्रह अपने पास नहीं रखेंगे। ऊपर जप मालिका की बात आई थी, इसका मतलब साधु भी जप मालिका रख सकते हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं ना कि साधु के लिए परिग्रह हो जाएगा, माला नहीं रखना चाहिए साधुओं को, उंगली पर करना चाहिए माला जाप, तो ये सब लोगों की मतलब बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें हैं कल्पनाओं की। लेकिन जो साधु के योग्य हैं, अब देखिए माला की कभी जरूरत पड़ सकती है और कभी बिना माला के कर लो, समय समय की बात है। वो तो जब पेट भरा होता है, प्यास नहीं लगी रहती, तो फिर लगता है कि ये साधु हवा में क्यों बैठे हुए, गर्मी सहन क्यों नहीं करते अंदर कमरे में बैठ कर के, और खुद उपवास कर लो फिर सहन करके बताओ गर्मी, तो पता चलता है। ये बात है, फिर अचेतन क्या क्या है उसके नाम बता दिए। वास्तु यानी मकान, क्षेत्र का जमीन है, वास्तु का अर्थ मकान भवन वगैरह, त्यागी निवास भी हो सकता है। फिर धन है, सुवर्ण है, रत्न है, रूप्य माने चांदी है। फिर ताम्र यानी तांबा है, वस्त्र भी हो सकते हैं, भाजन यानी बर्तन है, शैया यानी पलंग है, पाटा। और आसन का अर्थ बैठने का स्थान हो सकता है, और अशन करो तो फिर भोजन आदि को वर्जयति, छोड़ देते हैं, मतलब ये चीजें परिग्रह रूप में अपने पास नहीं रखते। कथम, कैसे छोड़ते हैं? सर्वथा, सर्व प्रकार, सर्वथा यानी सब प्रकार से। मनोवचन काय योगेन, मन वचन काय तीन प्रकार के योग से त्रिविधेन, प्रत्येकम कृतकारितानुमत भेदेन, कृतकारितानुमोदनेन प्रकारेण संगम त्यजति, माने नौ प्रकार से छोड़ देते हैं। मन वचन काय कृतकारितानुमोदनेन, मनसा कृतकारितानुमोदनेन परिग्रहं त्यजति वचनेन, इस प्रकार पूरे नौ भंग बना करके बता रहे हैं। और कीदृक्सन मुनि, वो कैसे होते हुए मुनि? लोक व्यवहार विरत, लोकानाम व्यवहार, लोकों का व्यवहार क्या है? मान सम्मान दान पूजा लाभादि लक्षण है। मान सम्मान होता है लोगों में, साधु को इससे मतलब नहीं। दान पूजा होती है, लोग एक दूसरे को दान आदि देते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, इन चीजों से विरत, तस्मात विरत विरक्त, उनसे विरत रहते हैं, उनको छोड़ देते हैं, निवृत्त है। अथवा संग यात्रा, प्रतिष्ठा, प्रतिमा, प्रासाद, उद्धरण आदि, पुण्य करणादि रहित। देखो कहाँ तक कह दिया कि साधु जो है संग की यात्रा कराने के लिए, प्रतिष्ठा कराने के लिए, या प्रतिमा प्रासाद का अर्थ होता है जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा की स्थापना, और प्रासाद यानी मंदिर, इनका जो उद्धरण यानी जीर्णोद्धार है, ऐसे पुण्य करणादि रहित इनको भी छोड़ देते हैं उत्तम आकिंचन्य वाले मुनि। तथा तत्वार्थ सूत्र एवं अप्युक्तं च, उसी तरह तत्वार्थ सूत्र में ऐसा भी कहा गया है, नास्ति अस्य किंचनम किमपि अकिंचन, जिनके पास कुछ नहीं वो अकिंचन, निष्परिग्रह परिग्रह रहित है, तस्य भाव कर्म वा आकिंचन्यम, उनका भाव जो परिग्रह रहित है उनका भाव आकिंचन्य, अथवा उनका कर्म यानी उनकी प्रवृत्ति वो आकिंचन, निष्परिग्रहत्वम निष्परिग्रहपना। निज शरीर आदिशु संस्कार परिहाराय, अपने शरीर आदि के प्रति संस्कार का परिहरण करने के लिए, ममेदमित्यभिसंधि निषेधनम इत्यर्थ है, ये मेरा है इस प्रकार के अभिप्राय का निषेध करना, इसी का नाम आकिंचन्य। तदा आकिंचन्यम चतुः प्रकारं भवति, वो आकिंचन्य चार प्रकार का होता है, स्वस्य परस्य च जीवित लोभ परिहरणम, अपने और दूसरों के जीवित रहने के लोभ का त्याग, स्वस्य परस्य च आरोग्य लोभ परिहरणम, अपने और दूसरों के स्वस्थ रहने के लोभ का भी त्याग, स्वस्य परस्य च इंद्रिय लोभ परिहरणम, अपने और दूसरों के इंद्रिय संबंधी लोभ का भी त्याग। इंद्रिय संबंधी लोभ का एक दृष्टांत दिया था कल की, नंबर न बढ़ जाए चश्मे के, ये इंद्रिय का लोभ हो गया। स्वस्य परस्य च उपभोग लोभत्यजनं चेति, अपने और दूसरों के उपभोग यानी इंद्रिय सुख संबंधी लोभों का त्याग, इस तरह चार भेद हो जाए। ऐसे इसमें आया था उत्तम शौच में, शरीरादिशु निर्ममत्वात्, शरीर आदि के प्रति निर्मम होने के कारण परम निर्वृतिम अवाप्नोति, परम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। यथा यथा शरीरम पोषयति, जैसे जैसे शरीर को पुष्ट करते हैं, तथा तथा लाम्पट्यम तज्जनयति, वैसे ही वैसे ये शरीर भी लाम्पट्य माने लम्पटता पैदा करता है, माने आसक्ति उत्पन्न करता है। तपसि अनादरो भवति, और तप के प्रति अनादर हो जाता है शरीर का, जितना पोषण करो उतना। शरीरादिषु कृताभिष्वंगस्य, शरीर में जिसने आसक्ति की है, ऐसे मुने हैं मुनि के, संसारे सर्व कालम अभिष्वंगैव, संसार में 24 घंटे आसक्ति बनी रहती है।